पृष्ठ संख्या 86, अध्याय 7। चिट्ठी हाथ में पकड़े ही पकड़े प्रमिला का भाई चिल्लाने लगा। नंगे बदन, गर्दन में तौलिया डाले, नीचे तमाहत बांधे और मुंह में दातून रखे वह नहाने जा रहा था, जब नारंग साहब की चिट्ठी मिली। आवेश में उसकी गालों की पतली पतली फांकें लाल हो गईं। वह मुझे जानता है, वह है किस रोम में। एक बार छठी का दूध याद करा दूंगा। सरकारी अफसर हैं तो अपने घर में हैं, यहाँ किसी के कर्जदार नहीं हैं जो डरते फिरेंगे। मेरी बहन पर जो हाथ उठाएगा उसकी मैं आते खींच लूंगा। वह मुझे जानता नहीं, उल्लू का पट्ठा न जाने कैसा आ गया हमारे घर में। उसकी पत्नी चुपचाप चूल्हे के पास बैठी उसकी ओर देखे जा रही थी। क्या कह रहे हो, किसकी बात है, कुछ मुझे भी बताओ। बात है, परशुराम के होठों पर से गुस्से से झाग निकलने लगी थी। बात है, उसने होंठ चबाकर कहा, मेरी बहन को उसके घर वाले ने घर से निकाल दिया है, फिर बाप उधर खड़ा मुंह देख रहा है। पति चुप हो गए। पहले तो बाप के खत इधर उधर पड़े रहते थे, परशुराम ने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया था, कभी खत खोलता कभी खोलता तक नहीं था। आज सहसा उबलने लगा था, इसे उबल लेने दो। पत्नी ने यह बात गांठ बांध ली थी कि जब उत्तेजित हो तो बीच में नहीं बोलो, बाद में अपने आप ठंडा हो जाता है। तुम अब नहा लो जी, देखो तो सूरज छत पर आ गया है। किस वक्त नाश्ता करोगे और मैं किस वक्त खाना बनाऊंगी। यहीं पर हूँ, कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूँ। परशुराम ने आंखें निकाल कर पत्नी की ओर देखा। तुझे ज़्यादा भूख लगी है तो तू पहले खा ले। और परशुराम ने चिट्ठी को फिर पताका की तरह झुलाया। मैं इस ब्याह के ही खिलाफ था। पृष्ठ संख्या 87। न जान न पहचान, अब भुगते बहिन भी। और परशुराम रसोई घर के बाहर पिंजरे में बंद शेर की तरह ऊपर नीचे तेज तेज टहलने लगा। बार बार नाली की मोरी के पास पहुँच कर मुँह में से दतूर निकाल कर थूकता और फिर कागज का फड़का हाथ में लिए चलने लगता। उसने समझ क्या रखा है, मैं नाको चने चबवा दूंगा। दातून के तिनके उसके होठों के दोनों ओर चिपक गए थे। दातून आधी रह गई थी, मगर वह अभी भी उसे चबाए जा रहा था। यही स्थिति अखबार पढ़ते समय हुआ करती थी। तब भी वह गर्दन में तौलिया लटकाए दातून चबाता सारी सुबह अखबार पढ़ने व नाली में थूकने में बिता दिया करता था। आखिर परशुराम नहाकर गुसलखाने में से निकला और रसोई घर में पराठा और चाय का गिलास सामने रखकर बैठ गया। तो पत्नी ने धीरे से पूछा, तो फिर दिल्ली जाओगे क्या? जाऊंगा नहीं तो क्या, एक ही तो बहन है मेरी। बहन तो जान भी मांगे तो हाजिर है, उस पर मुसीबत आए और मैं चुप बैठा रहूं। वह भाई क्या जो बहन को मुसीबत में देखकर चुप बैठा रहे। फिर आज ही जाओगे क्या, देखो क्या करता हूँ। परशुराम ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, क्या लिखा है पिताजी ने, कुछ मुझे भी तो बताओ। क्या लिखा है, बहन को घर से चलता किया है, अब वह पिताजी के पास है, बेटे को पहाड़ पर किसी स्कूल में दाखिल करवा दिया है। मैंने भी उसकी लात नहीं तोड़ी तो मेरा नाम परशुराम नहीं। वह समझता क्या है, यहाँ कच्ची गोलियाँ नहीं खेलनी हैं। सरकारी अफसर है तो अपने घर में है, यहाँ बड़े बड़े सरकारी अफसरों को सीधा कर चुके हैं। पत्नी को फिर संशय हुआ, खत ने क्या सचमुच गहरी चोट की थी। तो फिर तुम जाओगे दिल्ली? जाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा, यहीं बैठा रहूंगा। तूने इस मामले को मजाक समझ रखा है, कब जाओगे? मैंने तो यों ही पूछा, तुम्हें जाना ही चाहिए, बहन तकलीफ में है। यों तो उसने राखी टिक्के पर भी कभी कभार ही याद किया है, मगर तुम जाओ गए तो कब आओगे? चला जाऊंगा भाई, कुछ सोचने समझने भी दिया कर, तू तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। पृष्ठ संख्या 88। अब पत्नी आश्वस्त हो गई कि परशुराम दिल्ली नहीं जाएगा। जा पाना इतना आसान भी नहीं था, 50 रुपये तो आने जाने की टिकट में ही निकल जाते, कहाँ से लाएं इतने पैसे। और फिर मामले यूँ थोड़े सुलझते हैं कि दिल्ली पहुँच गए तो मामला सुलझ गया। दिल्ली में एक नहीं बीसियों मित्र संबंधी बैठे हुए हैं, नारंग साहब खुद वकील हैं, या गए ना गए क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, बहन की ढढ़ास बंधेगी, पर ढढ़ास ढढ़ास में 100 रुपये पर पानी फिर जाएगा। डॉट डॉट। इसके बाद घर में दो एक दिन तक इस पत्र की चर्चा रही। परशुराम आजकल आजकल कहता रहा, फिर इस संबंध में सोचना तक उसे बोझिल लगने लगा और पट्ठे ने खत का जवाब तक नहीं दिया। चाची की राय थी कि मामले को किसी सूरत में भी कचहरी में ना ले जाया जाए। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मियाँ बीवी की खींचा तानी होती रहती है। कोई बात नहीं, उसने मायके भेज दिया तो अपनी ओर से बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं तो कहूँगी चुप करके जहाँ बैठी है वहीं बनी रह, या 2 दिन का उबाल है अपने आप ठंडा हो जाएगा। ना उसके दरवाजे पर जाकर एड़ियाँ रगड़ और न कचहरियों की खाक छान। तुझे पहले जो कुछ समझाती रही उस पर तूने अमल नहीं किया, पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे कहती हूँ वैसे ही कर, जहाँ बस ना चले वहाँ समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं कहाँ कहती हूँ कचहरी में जाऊँ, पर मैं पप्पू के बिना नहीं रह सकती। इस पर चाची हाथ पसार कर बोले, बच्चे का सुख चाहती है तो उसे वहीं बना रहने दो। बच्चा उसके पास रहेगा तो पल तो जाएगा, तेरा तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं। तू उसे खिलाएगी कहाँ से? अब जो हो गया सो हो गया, क्या मालूम इसी में कोई भलाई छिपी हो। अपने को बदहाल ना कर, मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। मैं कहीं बर्तन मांज लूँगी पर पप्पू को अपने पास रखूँगी। इस पर चाची की आवाज़ तेज हो गई, बर्तन मांजेगी और उसे अपने पास रखेगी, उसे भी जूठन खिलाएगी और खुद भी जूठन खाएगी, तो उसका भला नहीं चाहती? तेरा बेटा जब बड़ा होगा तो अपने आप तेरे पास चला आएगा, देख लेना। अभी उसके हित में यही है कि वह अपने बाप के पास रहे। पृष्ठ संख्या 89। पम्मी फर्श पर बैठी थी और दाईं उंगली से फर्श कुरेदे जा रही थी। उसने फिर सिर हिला दिया। मैं रात भर सो नहीं पाती चाची, यही सोचती रहती हूँ पप्पू कहाँ पड़ा होगा। उस पर से कपड़ा उतर जाता होगा तो जाने कोई ओढ़ाता भी है या नहीं। बहुत बातें नहीं कर पम्मी, मर गई होती तो तेरे बच्चे को कोई पालता या नहीं। बड़ी आई बच्चे वाली, बच्चे का सुख चाहती है तो उसे वहीं पड़ा रहने दे। तभी प्रमिला को दोनों कंधों से पकड़कर छाती से लगाते हुए और उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए चाची बोली, जाप किया कर पम्मी, जाप किया कर। जाप से अंदर का मैल धुल जाता है, जाप से भगवान तक बस में आ जाते हैं। फिर प्रमिला का हाथ अपने हाथ में लेकर चाची देर तक उसे जाप की महिमा के उदाहरण सुनाती रहे। 1 लाख बार जाप करो तो न केवल मन को त्राण मिलता है, बल्कि भगवान मन की मुराद भी पूरी कर देते हैं। डॉक्टर के बेटे पर ग्रह था, पति पत्नी ने 1.25 लाख बार गायत्री का जाप किया, उस पर पूरा 1 महीना लग गया और ग्रह टल गया। बाबू मुल्कराज की नौकरी छूटने जा रही थी, उसे नोटिस मिलने वाला था। एक साधु महात्मा ने कहा, 1 लाख बार गायत्री का जाप करो। तू मानेगी नहीं पम्मी, सचमुच महीने के अंदर अंदर वह नौकरी पर बहाल हो गया। मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ पप्पू मेरे पास आ जाए, प्रमिला ने फर्श की ओर देखते हुए कहा। जाप कर, मैं तुझे महाराज के पास ले जाऊंगी, वह तुझे उपाय बताएंगे। सत्संग में मेरे साथ चला कर, वहाँ बहुत लोग आते हैं, मन को बड़ी शांति मिलती है। हमारे बुजुर्ग जाप की इतनी महिमा गाते हैं। फिर प्रमिला के घुटने पर हाथ रखकर चाची हंसकर कहने लगी, औरतों को तो यों भी जाप करते रहना चाहिए, पति बस में ना रहे तब भी जाप की जरूरत, बच्चा तंदुरुस्त ना रहे तब भी जाप की जरूरत, घर वाले की नौकरी छूटने वाली हो तब भी जाप की जरूरत, ।। पृष्ठ संख्या 90। दूसरी ओर महेंद्र की जहनी शिकने साफ करने के लिए नाटा अपनी रौब में था। उसकी जवान खुल रही थी और वह अपने अंदाज में बातें किए जा रहा था। अबे उल्लू के पट्ठे, ये बातें छिपकर होती हैं। इश्क नाम की चीज़ न कभी दुनिया में थी न होगी। बड़ा आशिक बनता है, औरों को भी दुख करता है, खुद भी रुसवा होता है। तू जिस औरत से मनाए यारी रख, पर घर क्यों तोड़ता है? छिपाने का नाम ही सदाचार है, कौन नहीं छिपाता? साले सभी छिपाते हैं, कौन एक व्रती है? केवल वही एक व्रती है जो चुगद है, सभी औरतों से भोग करते हैं। औरत बनी ही भोग के लिए है, पर लोग अपने घर नहीं तोड़ते, सभी औरतों के पास जाते हैं और सभी छिपाते हैं। दुनिया झूठ पर ही कायम है, छिपाओगे तो सब कुछ पाओगे, बताओगे तो चुगत कहलाओगे, तू बहुत ईमानदार बनता है। साले 2 दिन की लज्जत है। ईमानदारी में बीबी को घर से बाहर किया, बच्चे की जिम्मेदारी आपने ऊपर ले ली। इतना प्रेम का भगत था तो उससे ब्याह क्यों किया था? हमारी भी घर वाली है, बाप ने कहीं से पकड़कर हमारे गले बांध दी। हमारा मिजाज नहीं मिलता, पर साले हम उसे धकेल कर बाहर तो नहीं फेंक रहे हैं। बच्चे भी 5 दे दिए हैं, पालो साली, बैठकर पालो, हमें खुला छोड़ दो। अब हम वक्त पर घर जाएं, देर से जाएं, जाएं ना जाएं, उसकी हिम्मत नहीं पूछ ले। अब कोई यह तो नहीं कह सकता कि नाटे शाह ने बीबी के साथ बुरा सलूक किया है। अगर गली मोहल्ले में कोई हमारी बदनामी करे तो हमारी बीबी उसकी आंख नोच ले। वह भी छिपाती है, हम भी छिपाते हैं। गाड़ी चल रही है पर अंदर से हमारी नहीं पड़ती। हमारी पत्नी से हमारा शराब का रिश्ता है, बस शराब पी रखी हो तो कभी कभार उसके पास चले जाते हैं। बिना शराब पिए तो हम उसके पास जा भी नहीं सकते। झूठ क्यों कहें, पर उसे हिदायत दे रखी है कि रोज रात को नहाकर और पाउडर लगाकर बैठा करे। साली नहा भी ले तो भी हमारा नशा उसे देखकर उतर जाता है। झूठ क्यों कहें, पर हमने उसे खाने ओढ़ने की तकलीफ तो नहीं दी। 22 कैरेट सोने की चूड़ियाँ बनवा कर दी हैं पिछले साल। इधर उधर कभी लात वात भी जमा देते हैं ताकि सीधी चलती रहे, पर घर तो नहीं टूटने देते। हमें बेड टी वक्त पर मिल जाए, हमारे कपड़े धुले धुलाए अलमारी में आ जाएं, हमारा भोजन हमें वक्त पर मिल जाए, बस फिर हम तो रमता जोगी हैं, रमते हुए जिधर निकल जाएं। अब बता साले, हम ज़्यादा शरीफ हैं या तू? अबे उल्लू के पट्टे, उसे घर पृष्ठ संख्या 91 बुला ले और बच्चे को उसके हवाले कर, भले मानुषों की तरह। जिस औरत के पीछे मतवाला हुआ घूमता है, 2 दिन बाद वह भी बासी पड़ जाएगी। साले उसके मुंह में से भी बू आने लगेगी, उसी स्तर पर आ जाएगी जिस स्तर पर तेरी बीवी है, बल्कि तेरी बीवी ज़्यादा नमकीन है। साले उसके साथ मेरा ब्याह हुआ होता तो उसे फूलों की सेज पर सुलाता। अपने मोटे चश्मे के पीछे से महेंद्र की छोटी छोटी आँखें नाटे के चेहरे की ओर देख रही थी। धीमी सी आवाज़ में बोला, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ नाटे। तू इस बात को नहीं समझेगा, तू तो तुच्चा है, पल्ले दर्जे का। तू तो जानता भी नहीं कि प्रेम किसे कहते हैं। अरे वाह रे वाह, एक औरत के साथ इश्क क्या किया? हमें प्रेम के उपदेश देने चला है। साले हम 20 औरतों के साथ प्रेम कर चुके हैं, एक से एक सच्चा। हम असल प्रेमी हैं या तू? सुन मेरे राजा, जमाना बदल रहा है पर अभी पूरा नहीं बदला। अगर आज़ाद बनकर रहना चाहता है तो अपना घर बनाए रख और सब काम छिपकर करता जा। इश्क के कारण तो साले तब भी घर नहीं टूटेंगे जब दुनिया बदल जाएगी, तब घर ना बनेंगे ना टूटेंगे। तू प्रेम के कारण घर तोड़ रहा है, तेरे जैसा पिछड़ा हुआ इंसान दुनिया में नहीं है। साले अगर बीवी कमाती खाती हो और तू उसे घर से निकाल दे तब तो कोई बात भी बनती है। साले इश्क नाम की कोई चीज़ नहीं दुनिया में, अपना घर बनाए रख, उसे तोड़ नहीं। तू यह समझ, नाटा नहीं खुद अफलातून तुझे नसीहत कर रहा है, जिसने दुनिया देखी है, छिपाओ और जिंदगी का मजा लो। बस हम तो यह मानते हैं, सुख लो और औरतों के शरीर से प्रेम करो। साले ना जाने तू कौन सा प्रेम करता है, हम तो औरत के शरीर के पुजारी हैं। बात करते करते नाटा रेस्तरां में सहसा उचक कर खड़ा हो गया। साले निकल गई, हाथ से निकल गई, तेरी बातों ने कहीं का नहीं छोड़ा। और लंबे डग भरता हुआ छरहरे बदन की नाजुक सी उती के पीछे पीछे वह रेस्तरां में से बाहर निकल गया। प्रमिला को घर से निकाल देने की खबर से सतवंत के घर में गहरी उदासी छा गई। सतवंत के गले से तो कौर नहीं उतर पाता, बार बार टप टप आंसू गिरने लगते। सरदार जी भी बहुत खिन्न महसूस कर रहे थे। सतवंत बार बार उत्तेजित हो उठती थी पर सरदार साहब शांत थे। पृष्ठ संख्या 92, तुम बात तो करके देखो, सतवंत बोली। तुम्हारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? एक ही दफ्तर में काम करते हो, कॉलेज में एक साथ पढ़ते रहे हो। यह उसका निजी मामला है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। सरदार जी ने दो टूक जवाब दे दिया। निजी मामला क्या होता है? वह पत्नी को घर से निकाल दे और सभी मित्र संबंधी खड़े देखते रहे, अंदर की बातें हमें नहीं मालूम। सत्तो, कौन जाने किसका दोष है, तुम प्रमिला का पक्ष ले रही हो क्योंकि वह तुम्हारी सहेली है। सत्तो व्याकुल हो उठी। पहली बार उसे लग रहा था जैसे कहीं कुछ टूटा है जिसे जोड़ना आसान काम नहीं है, और उसका दिल दहल गया। जिस सुरक्षा को वह अस्थायी समझे बैठी थी उसमें किसी वक्त भी भयानक दरारें पड़ सकती हैं। महेंद्र ने जिस दिन प्रमिला को घर से निकाला था उस दिन प्रमिला अपनी सहेली को मिलने नहीं आई थी। महेंद्र ने सीधा उसे तांगे में बैठा कर रवाना कर दिया था। इसकी कल्पना मात्र से सतवंत घबरा जाती थी। क्या यूं भी बातें हो सकती हैं? जो आदमी बरसों तक एक दूसरे के साथ इतनी घनिष्ठता से रहते रहे हों वह सहसा एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाए, एक दूसरे से नफरत करने लगे। प्रमिला को तो मैं जानती हूँ, वह तो गुपचुप तांगे में बैठ गई होगी। मैं होती तो महेंद्र की आंखें नोच लेती। ब्याह के क्यों लाया था? अगर यूं धक्का देकर घर से निकाल देना था तो क्या तुम समझते हो प्रमिला का दोष है? इसमें क्या प्रमिला का भी दोष हो सकता है? उस बेचारी को उसने कहीं का नहीं छोड़ा, उसे पीटता रहा है, धमकियां देता रहा है, अब घर से निकाल दिया है, फिर भी कहते हो प्रमिला का दोष हो सकता है। कोई क्या जाने, सरदार जी ने अखबार पर से आंख उठाते हुए कहा। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, महेंद्र का दोष तो सामने नजर आ रहा है। फिर सरदार जी ने कंधे बिचका कर सिर हिलाया। तुम अपनी सहेली को बड़ी गलत सलाह देती रही हो सत्तो। सतवंत का दिल धक से रह गया। अंदर ही अंदर यह बात उसके दिल को कुरेदे जा रही थी कि उससे स्वयं भूल हुई है और प्रमिला को उसने गलत रास्ता सुझाया है। मैंने क्या किया है? होता तो शायद तब भी वही जो कुछ अब हुआ है, पर मैं समझता हूँ तुमने पृष्ठ संख्या 93 उसकी स्थिति को ठीक से नहीं समझा, उसे गलत तरीके सुझाती रही हो। सतवंत का चेहरा पीला पड़ गया। कौन से गलत तरीके सुझाती रही हूँ बताओ तो, मैंने क्या गलत किया है? तुम उसे महेंद्र का विरोध करने की सलाह देती रही हो, यह तरीका गलत था। इस तरह बातें सुलझती नहीं हैं। उसने पीटना तो छोड़ दिया था, यह तो तुम भी मान गए थे। सरदार जी चुप रहे। छोड़ दिया था यह तो ठीक है, पर अंदर ही अंदर उसके मन में गांठ पड़ गई थी। अब मेरी तुम्हारी जो किसी बात पर अनबन हो जाए, तुम हर राह जाते को बताने लगो और मुझे बदनाम करने लगो, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या कोई प्रेम रह जाएगा? मगर पीटना क्या शरीफों वाली बात है? पराए घर की लड़की को घर में लाकर पीटो, सतवंत ने उत्तेजित होकर कहा। उसे फिर से लगने लगा कि प्रमिला को दिया गया परामर्श गलत नहीं था, ठीक ही था। आज के जमाने में कोई आदमी अपनी पत्नी को पीट दे और सब देखते रह जाएं और फिर कहें कि पत्नी का दोष था। सतवंत को फिर गुस्सा आ गया। महेंद्र उसे पीटता रहा, उस वक्त तो तुमने जवान तक नहीं हिलाई। प्रमिला ने इसका विरोध किया तो वह बुरी बन गई? वाह जी, देख लिया तुम्हारा इंसाफ। पर सरदार जी उत्तेजित नहीं हुए। बुरी बात थी, कौन कहता है बुरी बात नहीं थी, पर उस वक्त तुम बोले क्यों नहीं? महेंद्र से कहा क्यों नहीं कि बीबी पर हाथ नहीं उठाओ? मैं कहती नहीं थी कि महेंद्र के दोस्तों का फर्ज है उसे समझाएं? उस वक्त भी तुमने यही कहा था कि मियाँ बीवी का निजी मामला है, इसमें तुम दखल नहीं दोगे। सतवंत नहीं समझ पाएगी, सरदार जी ने मन ही मन कहा और चुप रहे। यह औरतों के हकों की बड़ी दुहाई देती रहती है, यह दुनिया को नहीं जानती। औरत चाटे क्यों खाए, किसी का कोई मतलब नहीं चाटे मारने का। सतवंत ने फिर उत्तेजित होकर, मैं उसकी जगह होती तो उसका मुंह तोड़ देती। बस बस सत्तो, बहुत बढ़ चढ़कर बातें नहीं किया करो। प्रमिला ने उसका पृष्ठ संख्या 94 मुंह नहीं तोड़ा, फिर भी महेंद्र ने पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या करती फिर, क्या क्या करती, अब क्या कर लिया? सरदार जी उत्तेजित होने लगे, मानो उनकी पत्नी महेंद्र का विरोध न करके उनका विरोध कर रही हो। अब महेंद्र ने उसे घर से निकाल दिया है तो वह क्या करेगी, कहाँ जाएगी? ले देकर 10 जमात पढ़ी है तेरी सहेली, 10 जमात वालों को चपरासन की नौकरी भी आजकल नहीं मिलती। क्या अपने बाप के पास रहेगी? बाप के पास रखा ही क्या है? तुम कैसी बातें करती हो, जज्बाती बातों से भी कभी मामले हल हुए हैं? मैंने ठीक कहा था, गलत नहीं कहा था, सतवंत ने फिर उत्तेजित होकर कहा। मैं सोचती हूँ आज भी कुछ लोग उसके अफसर के पास जाएं तो वह सीधा सतर हो जाएगा। मैं उसे जानती हूँ, तुम चाहते हो प्रमिला पिटती भी रहती और चुप भी बनी रहती, दो टुकड़ों के लिए। वह दूसरी औरत के पास जाता था उसे जाने देती। वह अपनी सारी तनख्वाह अपने पास रखता था, रोज रात को उससे हिसाब लेता था, बच्चों के सामने उसे बुरा भला कहता था, पीटता था। क्या यह छोटी सी बात है? तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता? मेरे दिल पर तो सांप लौटते हैं। और सतवंत को सोफे पर पसर कर बैठा अपना पति बुरा लगा। तुमने ना तो उस वक्त कुछ किया, ना आप कुछ भी करने को तैयार हो। उनका निजी मामला है कहकर कन्नी काट रहे हो। सरदार जी फिर भी कोहनी के बल अधलेटे पसरे रहे और अलमारी की चाबी के साथ खेलते मुस्कुराते रहे। इनसे बनता बनाता कुछ नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि महेंद्र ने जो कुछ किया है ठीक किया है। तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं करूंगी। तुम क्या करोगी? सरदार जी ने भंवे चढ़ाकर हैरानी से पूछा। मैं उसके अफसर के पास जाऊंगी, उसे सारा किस्सा सुनाऊंगी, छोड़ूंगी मैं भी नहीं। एक बेगुनाह लड़की का घर बर्बाद हो जाए और सभी लोग बैठे देखते रहें, क्या कहेगी अफसर से? सरदार जी ने उसी तरह चाबी की चेन झुलाते हुए और व्यंग्य से मुस्कुराते हुए पूछा, यह क्या बच्चों कैसे सवाल पूछ रहे हो? क्या कहूंगी? प्रमिला पर जो भी बीती वही सब कहूंगी। पृष्ठ संख्या 95। और अगर उसने भी कह दिया कि प्रमिला और महेंद्र का निजी मामला है तो? सतवंत का दिल धक से रह गया। वह एकटक अपने पति के चेहरे की ओर देखती रही। उसे लगा जैसे कोई दरवाजा खटाक से प्रमिला के मुंह पर बंद कर दिया गया है। वह कैसे कह सकता है? सरकारी नौकर कोई अपनी पत्नी के साथ बुरा सलूक करे तो क्या सरकार उसके कान नहीं खींचेगी? सरदार जी हंस पड़े। कैसी बच्चों जैसी भोली भाली बातें करने लगी हो सत्तो? क्या सरकार ने उनकी शादी करवाई थी कि सरकार कान खींच लेगी? जाकर देख लो। फिर उसी तरह हंसकर बोले, वह पूछेगा तुम कौन हो तो क्या कहोगी? मैं कहूंगी मैं प्रमिला की सहेली हूँ। सतवंत को उत्तेजित देखकर सरदार जी धीरे से बोले, पागल नहीं बनो सतवंत, समझ बूझ से काम लो, इसमें मामला और ज़्यादा बिगड़ेगा। अब शायद कुछ मुद्दत बाद महेंद्र उसे वापस बुला ले, मगर दफ्तर में शिकायत करने पर वह और बिगड़ेगा। पर सतवंत ने सिर झटक दिया, बिगड़ेगा तो बिगड़ने दो, पहले उसने कौन सी कसर छोड़ रखी है? सरदार जी उठकर बैठ गए, उत्तेजित होकर बोले, महेंद्र ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया था कि प्रमिला बवेला मचाने लगी? किसी लड़की के पास जाने लगा था ना? 100 में से 90 आदमी जाते हैं। क्या सभी की बीवियां पागल हुई फिरती हैं? वह जानती हैं मर्द का ऐसा स्वभाव है और चुप रहती हैं। प्रमिला भी रो धो लेती मगर चुप बनी रहती। अपने आप महेंद्र का उबाल कुछ देर बाद ठंडा पड़ जाता। ख्वाम ख्वाह चीख चिल्लाकर इतना बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। उसे दोष नहीं दो, तुम भी प्रमिला को दोष देने लगे। महेंद्र खुद शादी तोड़ना चाहता था। तुम कहो या ना कहो, मैं तो करूंगी। मैं तो उसके अफसर के पास जाऊंगी, देखूंगी क्या कहता है। मजाक तो नहीं है कि बीबी को लात मारकर घर से बाहर निकाल दें? डॉट डॉट।